بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। दोस्तों, आपको एक सूचना देना है कि 30 अक्टूबर से हमारी फ्रिक्वेंसी बदल रही है। इस तरह से आप हमारे कार्यक्रम को 31 मीटर बैंड बराबर 9,620 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। आज बुधवार है, रबी अव्वल की 22, मेहर माह की 27 और अक्टूबर की 19 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आशा की किरण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। सुप्रीम लीडर का कहना है कि ईरानी महिलाओं ने पश्चिम की 200-300 वर्षों की कोशिशें बर्बाद कर दी। IMF ने ईरान को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए। रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। और अब आप मरियम मेरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने साम्राज्यवादियों के वर्चस्व के मुकाबले में विश्वविद्यालयों को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया, और कहा कि विश्वविद्यालय दुश्मनों के वर्चस्व को रोकेगा। ईरान भर के मेधावियों और जीनियस लोगों ने बुधवार को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसी भी जगह नौजवानों, खासतौर पर जीनियस नौजवानों की मौजूदगी उम्मीद जगा देती है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि साम्राज्यवादियों के वर्चस्व को रोकने का सबसे बड़ा साधन विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि दुनिया की साम्राज्यवादी शक्तियां और गुंडागर्दी करने वालों का मुख्य लक्ष्य वर्चस्व जमाना है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई का कहना था कि ईरानी औरतों ने अलग अलग मैदानों में अपनी भूमिका निभाई है और बहुत ऊपर तक गई हैं, वो भी इस्लामी हिजाब के साथ पर्दे का ख्याल रखते हुए। ये बहुत अहम बात है। ये वेस्ट की 200-300 वर्षों से जारी एक कोशिश को बर्बाद करना है। सुप्रीम लीडर का कहना था कि साम्राज्यवादी शक्तियां एक दिन हथियार के साथ, एक दिन धोखे के साथ और एक दिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ वर्चस्व जमाती हैं। उन्होंने ये बयान करते हुए कि विश्वविद्यालय उनका रास्ता रोक लेगा कहा कि यदि आप देश में विज्ञान का स्तर बढ़ा सकते हैं तो आपने दुश्मन के वर्चस्व के सामने एक रुकावट खड़ी कर दी है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए वार्ता की ताजा स्थिति पर रोशनी डालते हुए कहा कि परमाणु समझौते में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि वादों को बयान किया गया है, लेकिन प्रतिबंधों की समाप्ति की शैली क्या होगी इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने कहा कि वार्ता में तेहरान का मुख्य लक्ष्य एक अच्छे मजबूत और स्थायी समझौते की प्राप्ति है और ईरान उसी समय समझौते के अंतर्गत अपने वचनों पर अमल करना शुरू करेगा जब उसे सामने वाले पक्ष से वादों पर अमल करने की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान हर प्रकार के नुकसान या हर मूल्य पर हर प्रकार का समझौता नहीं करेगा बल्कि ईरान तार्किक समझौता और अपने आर्थिक हितों की रक्षा और उनको पूरा किए जाने का इच्छुक है।
लंदन में तैनात इस्लामी गणतंत्र ईरान के राजनयिक ने जर्मन राजदूत के अपमानजनक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने काले इतिहास के साथ आज जर्मनी एक सभ्य राष्ट्र के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुझे आपके पाखंडी व्यवहार के लिए आप पर शर्म आती है। फर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में तैनात जर्मनी के राजदूत ने हाल ही में अपने एक ट्वीट के जरिए यूक्रेन युद्ध में ईरान पर रूस को हथियार देने का बेबुनियाद आरोप लगाते हुए ये मांग की थी कि इसके लिए ईरान को सजा देनी चाहिए और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ये निराधार आरोप ऐसी स्थिति में लगाए जा रहे हैं कि जब इस्लामी गणतंत्र ईरान के अधिकारियों ने बारंबार यूक्रेन में युद्ध किसी भी तरह के हथियार भेजने से साफ इनकार किया है, जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में आग में घी डालने का काम अमरीका और पश्चिमी देशों ने किया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। अपने पूर्वानुमान में IMF ने इस्लामी गणराज्य ईरान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भरोसा जताते हुए उसे दुनिया की 21 बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ईरान के नाम की घोषणा की है। IMF के मुताबिक वर्ष 2022 में 171 देशों की अर्थव्यवस्था ईरान के मुकाबले में कम होगी। गौरतलब है कि अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में ईरान सहित 192 देशों के सकल घरेलू उत्पाद की भविष्यवाणी की है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उम्मीद जताई है कि क्रय शक्ति सूचकांक के आधार पर इस साल ईरान की GDP 1,599 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिसमें पिछले साल की तुलना में 150 अरब डॉलर वृद्धि हो जाएगी।
यह समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुफिया तरीके से मिसाइल पर काम कर रहे तुर्की ने कमजोरी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया है। ईरान प्रेस ने तुर्की के सुरक्षा सूत्रों का नाम न छापने की शर्त पर बताया कि परीक्षण स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे बंदरगाही शहर रिस के पास एक मोबाइल लॉन्चर से किया गया। 561 किलोमीटर तक उड़ने के बाद मिसाइल सिनोप बंदरगाह के पास समुद्र में गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफॉन नाम की इस सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी कई वर्षों से गुपचुप तरीके से चल रही थी।
कांग्रेस पार्टी ने बिल्किस बानो मामले की पृष्ठभूमि में आरोप लगाया कि सभी दोषियों की रिहाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से हुई और ये सब चुनाव के मद्देनजर किया गया। पार्टी ने ये सवाल भी किया कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने कहा कि इस कदम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। सरकार के अलगनामे के अनुसार CBI स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई और CBI की अदालत ने सजा माफी का विरोध किया था।
कांग्रेस अध्यक्ष के लिए होने वाले मतदान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 7,897 वोट हासिल किए हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। शशि थरूर ने खड़गे को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़े ही सम्मान की बात है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके आवास पर पहुंची। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर प्रियंका गांधी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर खड़गे जी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक जीवन का आपका जमीनी अनुभव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देगा। आपके नेतृत्व में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने पहुंचे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम भी खड़गे की आवाज पर पहुंचे।
यूक्रेन में मंगलवार का दिन एक बार फिर रूसी मिसाइलों के नाम रहा। रूस के ताजा मिसाइल हमलों में यूक्रेन में भारी क्षति हुई है। यूक्रेन में मंगलवार को हुए रूसी हवाई हमलों से इस देश की राजधानी की एफ समेत कई अहम शहरों की बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को देश को अंधेरे में धकेलने और शांति वार्ता की संभावनाओं को नामुमकिन बनाने के इरादे से विस्तारित रूसी सैन्य अभियान का हिस्सा करार दिया। रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया, जिससे बिजली और पानी की सप्लाई को काफी नुकसान पहुंचा है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को सलाह दी है कि वे खुद को अल्पसंख्यक न समझें। उन्होंने ये बात ढाका की ढाकेश्वरी मंदिर में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी लोग अपने धर्म से इतर समान अधिकार रखते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से कहा कि आप लोगों के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप लोग खुद को कम न समझें। उन्होंने कहा कि यदि देश के सभी लोग इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर किसी भी धर्म के खराब लोग सद्भाव को खराब नहीं कर सकेंगे। हमें ये भरोसा रखना होगा और एकता के साथ आगे बढ़ना होगा।
ब्रिटेन में यदि अभी कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव कराए जाते हैं तो भारतीय मूल के पूर्व ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री ऋषि सुनक अपने प्रतिद्वंदी एवं प्रधानमंत्री लीज ट्रस को हरा देंगे। एक नए सर्वेक्षण में मंगलवार को यह दावा किया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस के कामों से नाराज इस देश की जनता और स्वयं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ट्रस को उनके पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं लंदन में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एकता कॉन्फ्रेंस, यूरोप में कार्यस्थल पर हिजाब पर प्रतिबंध और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेगी भारत की क्रिकेट टीम। तो सबसे पहले शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एकता का विषय। लंदन में इस्लामिक सेंटर में
दोस्तों अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम, माफ कीजिएगा कि तकनीकी वजह से प्रोग्राम हमारा आ नहीं सका है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आशा की किरण।
Thank you. आशा की किरण।
प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और सैयद। में शाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि महामुक्ति दाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के वंश से हैं और वो महान ईश्वर की इच्छा से लोगों की नजरों से ओझल व गायब हैं और वो महान ईश्वर की इच्छा से ही लोगों के सामने प्रकट होंगे और पूरी दुनिया को न्याय से भर देंगे जिस तरह से वो अन्याय व अत्याचार से भरी होगी। महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बारे में जो शुभ सूचना दी गई है वो केवल आसमानी नहीं बल्कि गैर आसमानी धर्मों में भी दी गई है। सारांश ये है कि शायद ही कोई धर्म हो जिसमें मुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना ना दी गई हो।
जरतुष्टी भी उन्हीं धर्मों में से एक है जिनमें महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में हम आपका परिचय जरतुष्टी धर्म से कराना चाहते हैं। हजारों साल पहले ईरान में जरतुष्ट नाम के एक महान इंसान का जन्म हुआ था जिन्हें ईरानियों का पैगंबर कहा जाता था। कुछ लोग उन्हें दुनिया के पहले दर्शन शास्त्री या पहले ईरानी शायर के रूप में भी जानते हैं। जरतुष्ट के जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परंतु जो जानकारी है उसके आधार पर उनकी शिक्षाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रही हैं और आज भी ईरान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जरतुष्ट को एक पैगंबर मानते हैं और बातचीत में उनकी शिक्षाओं का उल्लेख करते और हवाला देते हैं।
जरतुष्तियों की किताब का नाम अविस्ता है जिसका अर्थ आधार व बुनियाद होता है। जरतुष्ती और अध्ययनकर्ता जिस बात पर सहमत हैं वो यह है कि अविस्ता बहुत बड़ी किताब थी जिसे 12,000 गायों की खाल पर लिखा गया था। जरतुष्तियों को गब्र, मजूसी और पारसी भी कहा जाता है। इतिहास में जिस चीज का वर्णन किया गया है उसके अनुसार जरतुष्ती ईरानी और अजरबैजान के रहने वाले थे और उरोमिया झील के निकट उनका घर था। जरतुष्त के जीवन काल के बारे में मतभेद हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वो 6000 साल ईसा पूर्व रहते थे। दूसरे शब्दों में 6000 साल ईसा पूर्व रहने वाले जरतुष्त ने भी मुक्तिदाता के आने की सूचना दी थी।
इस धर्म की शिक्षाओं के अनुसार इतिहास के तीन भाग हैं। आरंभिक 3000 साल में हजरत जरतुष्ट प्रकट होंगे और वह लोगों को महान ईश्वर की उपासना करने और अच्छे कार्यों को अंजाम देने का उपदेश देंगे। जरतुष्टियों की आस्था के अनुसार हजरत जरतुष्ट के बाद 1000 साल हुशीदर नाम के महामुक्तिदाता के प्रकट होने का समय होगा। उस समय बहुत अधिक वर्षा होगी और सूरज 10 दिनों तक आसमान के बीच में रहेगा। जरतुष्ट की शिक्षाएं इस बात का कारण बनेगी कि दुनिया से पाप और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोगों के दिलों में ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो जाएगा। लोग अच्छे और नेक कार्य अंजाम देंगे, परंतु कुछ समय के बाद लोग दोबारा बुरे कार्य करने लगेंगे। उसके 1000 साल के बाद हुशीदर माह नाम का दूसरा मुक्तिदाता आएगा और वह लोगों को महान ईश्वर की उपासना करने और अच्छे कार्य अंजाम देने का उपदेश देगा। लोगों के बीच न्याय, शांति और मित्रता व भाईचारे का वातावरण व्याप्त होगा। जमीन की बरकतों में वृद्धि हो जाएगी और निर्धनता का अंत हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे लोग दोबारा बुरे कार्य अंजाम देने लगेंगे।
जरतुष्तियों की आस्था के अनुसार अंतिम मुक्तिदाता का नाम सुशियानत होगा जो दूसरे मुक्तिदाता के 1000 साल के बाद प्रकट होगा। वो सदाचारी, बुद्धिमान और बहादुर होगा। वो राजा महाराजाओं की भांति शान व शौकत वाला होगा। उस समय वे नेक लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और वे लोग मुक्तिदाता की मदद करेंगे। जरतुश्तियों की आस्था के अनुसार मुक्तिदाता शैतानों और शैतान सिफत लोगों को खत्म करेगा, झूठ पर नियंत्रण करेगा, चारों ओर नेकी व भलाई का प्रचार प्रसार करेगा और इंसानों को मानवता के शिखर पर पहुंचाएगा। चारों ओर शांति, सुरक्षा और न्याय ही न्याय होगा। कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। न्याय और अध्यात्म का वातावरण होगा। लोग एक दूसरे को अपना समझेंगे, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान करेंगे। इसी प्रकार जरतुश्तियों का मानना है कि इस प्रकार के सुनहरे समय के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा और प्रलय का समय आ जाएगा। जरतुश्तियों की जो आस्था है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सुशियानत उस समय जहूर करेगा जब लोग सुशियानत की बातों को सुनने और उस पर अमल करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे।
अलबत्ता जरतुश्तियों की पवित्र किताब अविस्ता और उनकी दूसरी धार्मिक रचनाओं में बहुत अधिक परिवर्तन और हेराफेरी हो गई है, और इतिहास को जो तीन भागों में बांटा है आज तक उनकी ये बात और दूसरी बातें व्यवहारिक नहीं हुई है। उनकी धार्मिक किताब और धार्मिक रचनाओं में इतना अधिक हेराफेरी हो चुकी है कि पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह बात शत प्रतिशत सच है, परंतु इस धर्म के मानने वाले लोगों की आस्थाएं इस बात की सूचक हैं कि वे भी महामुक्तिदाता के आने की प्रतीक्षा में हैं। उनका भी मानना है कि आने वाला मुक्तिदाता सद्गुणों से सुसज्जित होगा, वह दुनिया से हर प्रकार की बुराई का अंत करेगा और चारों ओर न्याय की मधुर बयार बहेगी।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
दोस्तों, दुनिया में इस समय जिस धर्म के अधिक मानने वाले हैं उनमें से एक हिंदू धर्म है। इस धर्म के मानने वालों की संख्या इस समय करोड़ों में है। इस धर्म की शिक्षाओं में भी दूसरे धर्मों की बहुत सी शिक्षाओं में समानता है। इस धर्म में भी स्वर्ग और नरक का उल्लेख है। कुछ लोगों का कहना है कि अति प्राचीन समय में ये ईश्वरीय धर्म था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी शिक्षाएं बहुत अधिक बदल गईं और लोग इस धर्म की मूल शिक्षाओं को भूलकर अपने मन से मनाई शिक्षाओं को हिंदू धर्म की शिक्षा कहने लगे हैं।
हिंदू धर्म महान ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी मानता है, यानी उसका मानना है कि ईश्वर का कोई आकार व शरीर नहीं है, वह किसी चीज से मिलकर नहीं बना है और वह सर्वव्यापी है, यानी हर स्थान पर मौजूद है। दूसरे शब्दों में कोई स्थान ही नहीं जहां महान ईश्वर ना हो। इस तरह हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक की बात की गई है। हिंदू धर्म में आत्मा की बात कही गई है, जिसे इस्लाम रूह कहता है। इसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में इस्लाम और हिंदू धर्म की शिक्षाएं लगभग समान हैं। जिन लोगों का मानना है कि अति प्राचीन समय में हिंदू धर्म भी ईश्वरीय धर्म था, उन लोगों का कहना है कि दोनों धर्मों की कुछ शिक्षाओं में समानता इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म भी अति प्राचीन समय में ईश्वरीय धर्म था, और समय बीतने के साथ साथ उसकी विशुद्ध शिक्षाओं में इतना अधिक बदलाव हो गया कि अब कोई उसे ईश्वरीय धर्म नहीं कहता।
बहरहाल हिंदू धर्म में भी मुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि अंतिम समय में मुक्तिदाता आएगा और ये वो समय होगा जब पूरी दुनिया में अत्याचार व अन्याय का बोलबाला होगा। पूरी दुनिया में अनैतिक मूल्यों का चलन आम हो जाएगा। लोग भले इंसान का मजाक बनाएंगे और गलत कार्य करने वालों को इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। हिंदू विशेषकर विष्णु धर्म की शिक्षाओं के अनुसार पापों व भ्रष्टाचार का व्यापक हो जाना, प्राकृतिक आपदाओं का अधिक हो जाना, बाढ़, अकाल, बीमारी, निर्धनता, युद्ध, असुरक्षा और भेदभाव आदि महामुक्तिदाता के आने की विशेष अलामतें हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म की किताबों में कहा गया है कि अंतिम समय में शासकों के अत्याचार अधिक हो जाएंगे। दुनिया से अत्याचार के अंत और उसके सफाई के लिए लोग महामुक्तिदाता के आने की कामना करेंगे।
यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि हिंदू धर्म की शिक्षाओं के अनुसार महामुक्तिदाता ईश्वर की ओर से नहीं बल्कि खुद ईश्वर ही होगा जो इंसान के रूप में प्रकट होगा और वह पूरी दुनिया को अत्याचार व अन्याय से मुक्ति दिलाएगा और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म की एक पवित्र किताब गीता में आया है कि जब भी भलाई व नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है और बुराइयों का बोलबाला हो जाता है तो मैं यानी ईश्वर किसी शरीर के रूप में प्रकट होता हूं और लोगों के मध्य आता हूं ताकि भलाई की रक्षा और बुराई का अंत करूं। मैं हर दौर में आता हूं ताकि दुनिया में सच और न्याय की स्थापना करूं। हिंदू धर्म की किताबों में आया है कि अंतिम समय में जो मुक्तिदाता आएगा वह सफेद घोड़े पर सवार होगा। उसके हाथ में चमकती हुई तलवार होगी जिससे पापियों व अत्याचारियों का अंत करके पूरी दुनिया में शांति व न्याय की स्थापना करेगा। बहुत ही भयंकर व घमासान युद्ध होगा। वह हाथी और घोड़ों पर सवार समस्त अत्याचारियों को पराजित करेगा और दोबारा हिंदू धर्म की पूर्ण शिक्षाओं को लागू करेगा। हिंदू धर्म की एक पवित्र किताब उपनिषद में हम पढ़ते हैं कि वह महामुक्तिदाता विष्णु का प्रतीक होगा, सफेद घोड़े पर सवार होगा और उसके हाथ में तलवार पुच्छल सितारे की भांति होगी जो समूचे अत्याचारियों व राक्षसों का अंत कर देगा। नए सिरे से सृष्टि की रचना करेगा और पवित्रता को दोबारा बहाल व स्थापित करेगा। सारांश यह है कि हिंदू धर्म में भी महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है और यह भी कहा गया है कि मानवता का नए सिरे से आरंभ होगा।
कार्यक्रम के अंत में हम इस बात का उल्लेख करना जरूरी समझते हैं कि इस्लाम धर्म में जिस महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है उसकी एक विशेषता ये होगी कि वो पूरी दुनिया को उस तरह से न्याय से भर देगा जिस तरह से अन्याय और अत्याचार से भरी होगी। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेगा। वो इस्लाम धर्म की उन शिक्षाओं को लागू करेगा जिन्हें भुला या परिवर्तित कर दिया गया है। वो उन चीजों को खत्म कर देगा जो धर्म के नाम पर धर्म में शामिल कर ली गई हैं। चारों तरफ शांति ही शांति होगी। किसी को इस बात की आशंका तक नहीं होगी कि कोई उस पर अत्याचार करेगा या उसके अधिकारों को छीन लेगा। समस्त इंसान एक ही धर्म के अनुयायी होंगे। लोग अपने से अधिक दूसरों की भलाई व कल्याण के बारे में सोचेंगे।
दोस्तों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले महान व सर्वसमर्थ ईश्वर से दुआ है कि वह महामुक्तिदाता के जुहूर में जल्दी फरमाए और पूरी दुनिया को न्याय और शांति से भर दे।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशा की किरण और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, कार्यक्रम में हम इस बात की समीक्षा करने जा रहे हैं कि ईरान में अशांति पैदा करके किस प्रकार से यहां पर गृह युद्ध की स्थिति बदलते हुए देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से इस्लामी क्रांति के शत्रुओं का एक स्ट्रेटेजिक लक्ष्य इस देश की सरकार को गिराकर ईरान को तोड़ना रहा है। यह काम वर्ष 1979 में सफल होने वाली इस्लामी क्रांति के आरंभ से शुरू हो गया था। ईरान की शासन व्यवस्था को गिराने के लिए शत्रु हर प्रकार के षड्यंत्रों का सहारा लेता आ रहा है।
ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए जितने प्रयास आज तक किए गए हैं वे अभूतपूर्व हैं। ईरान में सरकार को गिराने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और जिस तरह से कार्रवाइयां की गईं, अगर इसी प्रकार के कार्रवाइयों का मात्र दसवां हिस्सा दुनिया के किसी भी देश के विरुद्ध प्रयोग कर लिया जाता तो वो सरकार गिर जाती या फिर अपने मूल लक्ष्यों से दिग्भ्रमित हो जाती। हालांकि पिछले 43 वर्षों से भांति भांति की दुश्मनियों और षड्यंत्रों का मुकाबला करते हुए इस्लामी गणतंत्र ईरान अब भी मौजूद है, जो विकास के मार्ग पर अग्रसर दिखाई दे रहा है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने जिस अनुपात में सरकार को गिराने के प्रयासों और षड्यंत्रों का मुकाबला किया, उसी अनुपात में शत्रुओं की ओर से प्रयास बढ़ाए गए। वर्तमान समय में ईरान में जो उपद्रव हो गया है उसकी आग में पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका और अवैध जानी शासन के संचार माध्यम लगातार ईंधन डालने का काम कर रहे हैं। ईरान इस समय साफ्ट युद्ध का ही सामना कर रहा है। ये बात किसी से भी ढकी छिपी नहीं है कि फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के तुरंत बाद यहाँ के शासन व्यवस्था को गिराने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए थे।
ईरान के केंद्रीय प्रांत उस समय पृथकतावादी गुटों की सक्रियता का केंद्र बन गए थे। उस समय जब नया नया इंकलाब आया था और ईरान की जनता अपनी पसंद की सरकार के लिए जनमत संग्रह में व्यस्त थी, उसी दौरान ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलगाव की कार्रवाइयां आरंभ करवाई गईं। उस काल में तुर्कमान सहरा से लेकर कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान और अजरबैजान प्रांतों में अलगाव की ज्वाला को भड़काया जाने लगा था। जनता का समर्थन करने के नाम पर बने खल्ग गुट ने जनता के ही विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयां आरंभ कर दी।
दोस्तों, देश को बांटने की दुश्मन की चाल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि इसी बीच पश्चिम के कुछ भ्रष्ट शासकों और अमेरिका के समर्थन पर इराक के तानाशाह ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला उसने स्वयं नहीं किया था, बल्कि इस काम के लिए उसको उकसाया गया था। उसे हर प्रकार के समर्थन का वचन दिया जा चुका था। सद्दाम का ये मानना था कि मात्र 8 दिनों के भीतर तेहरान पहुंचकर ईरान की इस्लामी क्रांति का काम तमाम कर दिया जाएगा, लेकिन 8 वर्षों तक वो इस युद्ध में घिरा रहा और तेहरान आने की उसकी मनोकामना कभी पूरी न हो सकी।
इस बीच ईरान 8 वर्षों के कड़े प्रतिरोध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में एक सशक्त देश के रूप में उभरा। ज्ञान, उद्योग, एरोस्पेस, सैन्य और अन्य क्षेत्रों में ईरान की गणना विश्व के देशों में होने लगी और क्षेत्र में वो कई हिसाब से एकमात्र देश बन गया। वर्तमान समय में रक्षा की दृष्टि से ईरान इतना मजबूत देश बन चुका है कि किसी भी देश में अब उसको टेढ़ी नज़र से देखने का साहस नहीं है। इन्हीं बातों के दृष्टिगत शत्रुओं ने इस्लामी गणतंत्र से मुकाबले के लिए अपनी शैली में परिवर्तन किया है।
अब दुश्मनों ने मानवाधिकारों के बहाने ईरान पर आरोप लगाते हुए एक नया शोषा उठाया है। उधर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए उसके विरुद्ध निराधार आरोप लगाए गए हैं, जो इसी षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इन निराधार आरोपों को आधार बनाकर ईरान के विरुद्ध व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इस संदर्भ में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं, जिस दौरान देश के युवा राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना खून बहा रहे थे, उसी दौरान मानवाधिकारों का दावा करने वाले ईरान के विरुद्ध सबसे कठोर प्रतिबंध लगा रहे थे। इस काम से वो ईरान के प्रतिरोध को तोड़ना चाहते थे। ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के बाद फिर ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंध लगाए गए। अपनी इस कार्रवाई से वे ईरानी राष्ट्र को घुटनों पर लाना चाहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने स्वयं ही ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों की विफलता को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में परमाणु समझौते से निकलने के बाद ईरान के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में दवाओं के निर्यात को भी शामिल किया गया, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। ये काम ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध अमेरिका का आर्थिक आतंकवाद है। ईरान के विरुद्ध दवाओं के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण देश में कई प्रकार की दवाओं की कमी हो गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा गए। इस प्रकार के कामों से शत्रु ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध को तोड़ना चाहता है।
इस संदर्भ में ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं, विश्व के साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रयास यह है कि दुनिया के जिस हिस्से में भी प्रतिरोध पाया जाता है उसको कुचल दिया जाए। ये वे देश हैं जिनके हाथों में वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त वे कई माध्यमों से विश्व का संचालन करते हैं। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि शत्रु के सामने झुक जाना सबसे बड़ी गलती है। उनका कहना है कि शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, दुश्मन के प्रति हमेशा सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि शत्रु से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको डराना चाहता है।
कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद ईरानी राष्ट्र इन प्रतिबंधों के दुष्प्रभावों को किसी सीमा तक निष्क्रिय बनाने में सफल रहा है, लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका और उसके पश्चिमी घटकों के षड्यंत्र समाप्त हो गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ईरानी राष्ट्र को परेशान रखते हुए वहां की सरकार और जनता के बीच मतभेद पैदा करना है। वे केवल इस्लामी गणतंत्र ईरान की व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ईरान के भीतर गृहयुद्ध भड़काकर उसको टुकड़ों में बांटना चाहते हैं।
इसी संदर्भ में ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि वे केवल इस्लामी शासन व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, बल्कि अमेरिका एक मजबूत ईरान को सहन नहीं कर सकता। साथ ही वो स्वयं एक आत्मनिर्भर ईरान भी नहीं चाहता। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि वैसे तो वो इस्लामी गणतंत्र ईरान का घोर शत्रु है, किंतु शत्रुता केवल इस्लामी गणतंत्र ईरान से ही नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से वे आत्मनिर्भर ईरान को किसी भी स्थिति में स्वीकार करना नहीं चाहते। वे पहलवी काल के ईरान को पसंद करते हैं, जो उनका पिछलग्गु और दूध देने वाली गाय की भांति था। कोई भी फैसला लेने के लिए उसे अमेरिका या ब्रिटेन के राजदूत की जरूरत होती थी, उनसे अनुमति लेकर वो अपना काम करता था। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि इस प्रकार के अपमान को ईरानी राष्ट्र किस प्रकार से स्वीकार करेगा। वे लोग ऐसे ही ईरान के विरोधी हैं।
वर्तमान समय में इस्लामी गणतंत्र ईरान के शत्रुओं ने इसके विरुद्ध अपने षड्यंत्रों को व्यवहारिक बनाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करते हुए इस देश के विरुद्ध व्यापक दुष्प्रचार भी आरंभ कर रखे हैं। उन्हें जैसा भी अवसर मिलता है उससे वो ईरान को बदनाम करने के भरसक प्रयास करते हैं। अब उन्होंने एक युवती की हत्या को मुद्दा बनाकर देश के भीतर उपद्रव आरंभ किया है। हालांकि अन्य देशों की ही भांति ईरान में भी लोगों के भीतर सरकार से कुछ गिले शिकवे हैं। इस प्रकार की शिकायतें सामान्यतः देशों में देखी जा सकती है। वे पश्चिमी देश जो ईरान के विरुद्ध दुष्प्रचार करने में व्यस्त हैं, उनके यहाँ भी सरकार के विरोध की आवाज़ें उठती रहती हैं। महंगाई और आर्थिक समस्याओं को लेकर इस समय बहुत से पश्चिमी देशों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बाहरी देश वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जबकि ईरान में ये काम बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है।
मां से अधिक दयालु दाई के रूप में अमेरिका, कनाडा और कुछ पश्चिमी देश ईरान में शांति स्थापित करने वाले सुरक्षा बलों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इस संबंध में वे खुलकर हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालिया कुछ महीनों के दौरान कनाडा में चर्च के स्कूलों में बच्चों की सामूहिक खबरें मिली हैं, जिन पर यौन हिंसा के निशान पाए गए हैं। ऐसी सामूहिक खबरों को देखकर हर इंसान को अफसोस होता है। ऐसे में एक युवती की मौत को बहाना बनाकर कनाडा ने ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों की धमकी दी है। संचार माध्यम विशेषकर विदेशी चैनल और सोशल मीडिया इस समय ईरान में नया संकट पैदा करने के लिए प्रयासरत हैं। पश्चिमी देश अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको हथकंडे के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से हम कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा नहीं पेश कर सके, अब पेश है राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। हैम्बर्ग सिटी में ईरानी स्कूल पर आतंकी हमला, पश्चिम क्यों कर रहा है यूक्रेन का समर्थन और कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, दोस्तों इन विषयों पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी के शहीद बहिश्ती स्कूल में ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, जिसके कारण स्कूल में आग लग गई। बर्लिन से अमीर शुजाई की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं साथी रविश जैदी।
पिछले दिनों जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी में स्थित एक ईरानी स्कूल पर आतंकी हमला हुआ। 13 अक्टूबर को शहीद बहिश्ती के नाम से हैम्बर्ग शहर में मौजूद स्कूल को अज्ञात आतंकियों ने निशाना बनाया। हैम्बर्ग पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी तक की जांच में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने खिड़की के जरिए शहीद बहिश्ती स्कूल में ज्वलनशील पदार्थ फेंका था, जिसकी वजह से स्कूल में आग लग गई। अभी हमारी जांच जारी है और अधिक जानकारी मिलने पर सूचित किया जाएगा। पुलिस के अनुसार स्कूल की इमारत में रहने वाले 7 लोग समय रहते इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे और अपनी जान बचा सके, जिनमें से एक 62 वर्षीय व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया गया है। हैम्बर्ग शहर के एक फायर ब्रिगेड अधिकारी का कहना है कि हमने बहुत कठिनाइयों से इमारत में प्रवेश करने के रास्ते को ढूंढा, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। जर्मनी में मौजूद ईरानी दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि हैम्बर्ग में मौजूद शहीद बहिश्ती स्कूल में ईरानियों के अलावा दुनिया भर के कई देशों के लोग फारसी भाषा को सीखने के लिए आते हैं। ईरानी दूतावास के अधिकारी का कहना है कि जारी वर्ष में 100 से अधिक छात्रों ने इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाया है। इस हमले के बाद अस्थायी रूप से स्कूल को बंद करना पड़ा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी स्कूल पर हुए हमले को 1 सप्ताह का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक जर्मन पुलिस हमलावर आतंकियों को नहीं ढूंढ पाई है। साथ ही कई सवालों और अनिश्चितताओं के जवाब भी नहीं मिल सके हैं। वो भी एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जो एक देश में दूसरे देश से संबंधित है। ईरानी दूतावास के अधिकारी का कहना है कि इससे पहले भी ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। तब भी जर्मनी में मौजूद ईरानी दूतावास ने हैम्बर्ग पुलिस से मांग की थी कि वो स्कूल की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएं, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर आतंकियों द्वारा स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस बीच जर्मनी में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक बार फिर इस देश की सरकार से मांग की है कि स्कूल पर हमला करने वाले आतंकियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही स्कूल की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोहराई न जा सके। इन सब के बावजूद अभी तक जर्मन पुलिस की ओर से इस घटना के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। बर्लिन से IRIB के संवाददाता अमीर शुजाई की रिपोर्ट।
अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन का जो समर्थन किया जा रहा है वो यूक्रेन के प्रेम में नहीं है, बल्कि रूस की शत्रुता में किया जा रहा है। हालांकि ये समर्थन आग में घी डालने का काम कर रहा है, किंतु अमेरिका और पश्चिम इससे पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं साथी मोहम्मद मेहदी।
दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन आरंभ कर रखा है और अब तक यह ऑपरेशन जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध को आरंभ हुए लगभग 8 महीनों का समय हो रहा है और इस युद्ध में दोनों तरफ का भारी नुकसान हो चुका है। इस भारी नुकसान की एक महत्वपूर्ण वजह अमेरिका, पश्चिमी व यूरोपीय देशों और नेटो द्वारा यूक्रेन का खुला व व्यापक समर्थन है। इन देशों ने यूक्रेन का समर्थन करके आग में घी डालने का काम किया है। ये देश एक ओर यूक्रेन का व्यापक समर्थन कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्होंने रूस पर कड़ा से कड़ा प्रतिबंध भी लगा रखा है। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी व यूरोपीय देश यूक्रेन का जो व्यापक समर्थन कर रहे हैं वो यूक्रेन की मोहब्बत में नहीं है, बल्कि वे रूस की दुश्मनी में ऐसा कर रहे हैं। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि वर्षों तक अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चला। शीत युद्ध का ये मतलब नहीं कि अमेरिका और रूस की दुश्मनी खत्म या कम हो गई, बल्कि वे एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करने से परहेज करते हैं और जब भी और जहां भी उन्हें मौका मिलता है वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में संकोच से काम नहीं लेते हैं। अमेरिका ने जिस तरह फारस की खाड़ी में अपने प्रभाव को बनाए रखने और इन देशों को अपने हथियारों की मंडी बनाए रखने के लिए ईरानोफोबिया की नीति अपना रखी है, उसी तरह उसने यूरोपीय देशों को समझा दिया है कि रूस तुम्हारी सुरक्षा के लिए खतरा है और उसकी नसीहत पर यूरोपीय देश अमल भी कर रहे हैं और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने में लेश मात्र भी संकोच से काम नहीं ले रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि खुद अमेरिका यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका ने अपने बहुत से परमाणु हथियारों को यूरोपीय देशों में रख रखा है और कुछ यूरोपीय देश ये समझते हैं कि अमेरिका को उनकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उसने ऐसा कर रखा है, जबकि अमेरिका को लेश मात्र भी यूरोप की सुरक्षा की चिंता नहीं है और उसने रूस से मुकाबले के लिए ऐसा कर रखा है। अगर रूस और अमेरिका के मध्य परमाणु युद्ध होता है तो यूरोपीय देशों की तबाही होगी, न कि अमेरिका में। इसी प्रकार बहुत से टीकाकारों का मानना है कि आज यूक्रेन की तबाही की असल वजह अमेरिका और नाटो हैं। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता की लालच व झांसा दे रखा है और यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ग्रहण करने का सपना देकर अपने देश को अमेरिका और नाटो की छावनी बनने की अनुमति दे दी और इन देशों के ड्रोन रूस की सीमा तक उड़ते और जासूसी करते थे और नाटो और अमेरिका के इस काम को रूस ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा समझा और 24 फरवरी को उसने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन आरंभ कर दिया। रोचक बात यह है कि अमेरिका और नाटो ने आज तक यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया, क्योंकि इन देशों को अच्छी तरह ज्ञात है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने का मतलब इस देश की ओर से रूस से युद्ध करना और अमेरिका और नाटो कभी भी रूस से सीधे सैन्य टकराव नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका और नाटो को भली भांति ज्ञात है कि रूस से टकराने का अर्थ अपनी कमजोरी व तबाही को दावा देना है। जानकार हलकों का मानना है कि अमेरिका और नाटो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे दूसरे देशों पर वर्चस्व और दादागिरी जमाने में इन देशों को किसी कठिनाई का सामना हो। बहरहाल, अमेरिका और नाटो किसी के सगे नहीं है और वे हमेशा अपने हितों के बारे में सोचते हैं और उसी के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करते हैं। यूक्रेन के समर्थन के नाम पर इस समय ये देश जो कुछ कर रहे हैं उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। एक सौ 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के छठे अध्यक्ष के रूप में मलिक अर्जुन को चुना गया है, जिसके कारण कांग्रेस कार्यालय में जश्न और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
कांग्रेस मुख्यालय में जश्न और खुशी का ये माहौल इसलिए नहीं है कि पार्टी ने किसी चुनाव में दूसरे दल पर कामयाबी हासिल की है, बल्कि ये खुशी इसलिए मनाई जा रही है कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष मिल गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निरंतर हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बीच दोरुखी मुकाबला था, जिसमें मल्लिक अर्जुन खड़गे को भारी सफलता मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि मल्लिक अर्जुन खड़गे को 9385 वोटों में 7897 वोट और शशि थरूर को 1072 वोट मिले, जबकि 416 वोट रद्द कर दिए गए। 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में ये छठा अध्यक्ष पद का चुनाव था, क्योंकि अधिकतर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध हो रहा था और अब 22 साल के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मल्लिक अर्जुन खड़गे 24 वर्षों के बाद कांग्रेस के ऐसे पहले अध्यक्ष चुने गए हैं जिनका गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने आशा व्यक्त की कि मल्लिक अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस सफलताओं की सीढ़ियां तय करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को दिल्ली सहित देश के दूसरे क्षेत्रों में डाले गए वोटों की गिनती आज सवेरे कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हुई, जहां मीडिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी मल्लिक अर्जुन खड़गे की सफलता को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बताया और आशा जताई कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगामी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जीतेगी।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। सुप्रीम लीडर का कहना है कि ईरानी महिलाओं ने पश्चिम की 200-300 वर्षों की कोशिशें बर्बाद कर दी हैं। आईएमएफ ने ईरान को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं और रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और इसी के साथ कार्यक्रम हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.